अब हम समाज के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। समाज के प्रकार सरल एवं जटिल समाज। विकास के आधार पर समाज को कई भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ हम सिर्फ मुख्य रूप से सरल समाज यानी सिंपल सोसाइटी एवं जटिल समाज यानी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की चर्चा कर रहे हैं। सरल समाज। सरल समाज वैसे लघु समाज को कहा जाता है जिनकी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी अपेक्षाकृत सरल होती है। ऐसे समाज का आकार छोटा एवं उनका पर्यावरण पर नियंत्रण भी सीमित होता है। इनकी अर्थव्यवस्था परंपरागत कृषि पर आधारित होती है। आजकल अधिकांश सरल समाज उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की कोशिश में है। ऐसे समाजों को संक्रमणशील समाज कहा जाता है। अधिकांश संक्रमणशील समाजों ने यूरोपीय औपनिवेशिक शासन को झेला है। इसके कारण सरल समाजों में अनेकानेक परिवर्तन हुए हैं। जीवन निर्वाह के लिए भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की विधि के आधार पर सरल समाजों की अर्थव्यवस्था को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला, शिकार और एकत्रीकरण, हंटिंग एंड गैदरिंग। दूसरा, पशुचरी, पेस्टोरल। तीसरा, अस्थायी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चौथा, अस्थायी कृषि, सेटल कल्टीवेशन। पहला, शिकार और एकत्रीकरण। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिकार और एकत्रीकरण करने वाले समाज अपना निर्वाह शिकार करके तथा विभिन्न प्रकार की जड़ों, कंदमूलों और फलों को इकट्ठा करके करते हैं। ऐसे समाजों का प्रकृति के साथ नजदीकी संबंध होता है। प्रकृति पर आश्रित होने के कारण वे स्वयं को प्रकृति के अनुकूल ढालते हैं। ऐसे समाज के लोग शिकारी जानवरों, फलों, जड़ों और कंदमूलों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। भारत में आज भी कुछ जनजातियां कहीं कहीं पर इसी स्तर में दिखाई पड़ती हैं। दूसरा, पशुचारी। पशुचारी समाज का मुख्य कार्य पशुपालन है। कुछ पशुपारी समूहों की अर्थव्यवस्था कुछ पशुचारी समूहों की अर्थव्यवस्था में कृषि भी शामिल हो जाती है। अपने जानवरों के लिए पर्याप्त पानी और चारा प्राप्त करने के लिए ऐसे समाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। भारत में मुख्य पशुचारी समाजों में डोडा तथा जम्मू कश्मीर के बकरवाल हैं। अस्थायी कृषि। अस्थायी कृषि में प्रत्येक कुछ सालों के बाद नई फसल उगाने के लिए कृषकों द्वारा नए मैदान साफ किए जाते हैं और पुराने मैदानों को प्राकृतिक उर्वरता के लिए छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं पर यह झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी कृषि अपनाने वाले लोग एक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक नहीं रहते हैं। अफ्रीका के बांतू जनजाति, मेघालय के गारो जनजाति, मध्य प्रदेश की बेगा और अबुझमार मारिया जनजाति, उड़ीसा की सौरा जनजाति तथा अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियों में आज भी कहीं कहीं पर अस्थायी कृषि का थोड़ा बहुत प्रचलन देखने को मिलता है। चौथा, अस्थायी कृषि। अनुपातिक दृष्टि से सरल समाजों की एक बड़ी अनुपातिक दृष्टि से सरल समाजों की एक बड़ी संख्या अस्थायी कृषि में संलग्न है, जो एक ही जमीन पर लगातार साल दर साल खेती करती है। अस्थायी कृषि के कारण अस्थायी निवास आवश्यक हो जाता है और निजी संपत्ति जैसे संस्था अधिक मजबूत हो जाती है। कृषि पर आधारित भारतीय ग्रामीण समाज इसका अच्छा उदाहरण है। वस्तु विनिमय पद्धति सरल समाज का एक आवश्यक अंग है। वस्तु विनिमय का उद्देश्य लोगों में सुदृढ़ और संस्थागत संबंधों का प्रदर्शन करता है। प्रायः वस्तुओं के विनिमय का उद्देश्य दो समूहों के बीच परस्पर संघर्ष की संभावनाओं को कम करना तथा उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना होता है। उदाहरण स्वरूप, ग्रामीण भारत में जन्म, विवाह, मृत्यु इत्यादि अनेक मौकों पर उपहारों का आदान प्रदान होता है। सरल समाज में उपहारों के आदान प्रदान से परस्पर सहयोग की भावना को मजबूत किया जाता है। सरल समाजों का सामाजिक संगठन चार स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे पहला नातेदारी, दूसरा विवाह, तीसरा धर्म और चौथा राज व्यवस्था। पहला नातेदारी। आमतौर पर जनजातीय समाजों को सरल समाज के रूप में लिया जाता है। जनजातीय समाजों को समाजों की अपनी भाषा, संस्कृति एवं अपनी ही किस्म की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। वे एक निश्चित भूभाग में फैले हुए होते हैं। वे लोग दो या अधिक खंडों में विभाजित होते हैं। जब वे दो खंडों में विभाजित होते हैं तो उसे अर्धांश कहते हैं। जब वे दो से अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो प्रत्येक को बहुअंशक कहा जाता है। आमतौर पर वे लोग अपने अर्धांश या बहुअंशक को के बाहर ही विवाह करते हैं, जिससे जनजातीय समूह के विभिन्न खंडों के बीच आपसी संबंध बना रहता है। सरल समाज के अंतर्गत वंश एवं गोत्र की प्रधानता होती है। वंश ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत पूर्वजों के बारे में निश्चित रूप से मालूम होता है। गोत्र वैसे समूह को कहा जाता है जिसके अंतर्गत संबंध एक ही पूर्वज से माना जाता है, परंतु पूर्वज का निश्चित पता नहीं होता है। वंश अपेक्षाकृत छोटा समूह होता है, जबकि गोत्र का आकार बड़ा होता है। वंश क्रम माता एवं पिता के माध्यम से जाना जाता है। माता की ओर से स्थापित वंश क्रम को मातृवंशीय कहते हैं। दक्षिण भारत की नयार जाति इसका अच्छा उदाहरण है। पिता की ओर से जाने गए वंश क्रम को पितृवंशीय कहते हैं। भारत में यह वंश क्रम सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहीं कहीं पिता और माता दोनों के माध्यम से वंश क्रम जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप याको जनजाति के में अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी पितृवंश से माना जाता है और चल संपत्ति का उत्तराधिकारी मातृवंश क्रम से माना जाता है। दूसरा विवाह। विभिन्न प्रकार के समाजों की तरह सरल समाज में भी सदस्यों के बीच सहवास को विवाह द्वारा ही सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। सरल समाजों में एकल विवाह प्रथा सबसे अधिक प्रचलित विवाह प्रथा है। कुछ जनजातियों में बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन है, जिसके दो रूप होते हैं। पहला बहुपत्नी विवाह यानी पोलियोगैनी, जिसमें एक समय में एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां होती हैं। दूसरा बहुपति प्रथा पोलियंट्री, जिसमें एक नारी एक ही समय में कई पुरुषों की पत्नी होती है, जो बहुत ही कम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की खासा जाति और तमिलनाडु की तोड़ा जाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। तीसरा धर्म। सरल समाजों में साधारण प्रौद्योगिकी होने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण पर इनका नियंत्रण बहुत कम होता है। जंगल की आग, बाढ़, बादलों की गड़गड़ाहट, मूसलाधार वर्षा, भूकंप, जंगली जानवर इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से वे डरे रहते हैं। पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण न होने के कारण वे बहुत चिंतित रहते हैं। सरल समाज के सदस्य यह मानते हैं कि कुछ आत्माएं और देवता प्रकृति का संचालन करते हैं। सरल समाज में इन प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पाने के लिए आत्मा, देवता, प्राकृतिक उत्पादनों की पूजा की जाती है। पूजा अर्चना के द्वारा प्रकृति की अनुकूल बनाने एवं संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। चौथा राज व्यवस्था। सरल समाज के अंतर्गत समाज की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी पूर्ण रूपेण राज्य में केंद्रित नहीं होती है। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा समाज में कानून व्यवस्था का कार्य होता है, जबकि जटिल समाज में नियम कानूनों का पालन का कार्य मुख्य रूप से राज्य के द्वारा संपादित होता है। सरल समाजों में राजनीतिक व्यवस्था दो समूहों में विभाजित होती है, पहला सिरस्थ एवं दूसरा सिरोहीन। सिरस्थ राजनीतिक व्यवस्था में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त मुखिया, प्रधान या राजा होता है, जो समाज के नियम कानूनों का पालन करवाता है। सिरोहीन या नेतृत्वहीन राजनीतिक व्यवस्था वह है जिसमें समस्त समाज का कोई एक मुखिया, प्रधान या नेता नहीं होता है और राज्य अभिकरण के बिना किसी अन्य ढंग से कानून व्यवस्था कायम की जाती है। संभवतः ऐसे समाजों के बुजुर्ग लोग सामाजिक परिपाटियों के आधार पर कानून व्यवस्था चलाते हैं। जटिल समाज। अब हम जटिल समाज के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक एवं आधुनिकोत्तर, फिर से सुनिए, आधुनिक एवं आधुनिकोत्तर समाज। आदिम मानव के शिकारी जीवन से लेकर मानव का चांद पर उतरने तक की प्रौद्योगिक पद्धति के आधुनिक काल में जटिल समाज को जन्म दिया है। आधुनिक समाज को जटिल समाज कहलाने के कई कारण हैं, जैसे पहला, विस्तृत क्षेत्र और उसकी विशाल जनसंख्या। दूसरा, अधिकाधिक पेशागत विविधीकरण तथा विशेषीकरण। तीसरा, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन, भवनों, उद्योगों आदि के निर्माण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। चौथा, जटिल समाज की प्रबंध व्यवस्था में अधिकाधिक तालमेल। एवं पांचवा, उपभोक्ता वस्तुओं तथा शिक्षा के स्वरूपों आदि में परिवर्तन को तेज गति। प्रौद्योगिक उन्नति के कारण सरल समाजों में परिवर्तन की शुरुआत हुई। बड़े बड़े नगर बने। व्यवसायिक अवसरों और आबादी के बढ़ने के साथ ही जटिल समाज की उत्पत्ति हुई। ऐसे समाजों में सरल समाज की अपेक्षा अधिक औपचारिक संगठन होते हैं। प्रौद्योगिक उन्नति का प्रभाव गांव की अपेक्षा शहरों में पहले दिखाई पड़ती है। इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव ग्रामीण समुदायों पर पड़ता है। ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरी समुदाय काफी प्रगतिशील होता है और इनके संगठनों में अधिक जटिलता पाई जाती है। आज का ग्रामीण समुदाय इस प्रौद्योगिक उन्नति से अछूता नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जटिल समाज की तरह आज के ग्रामीण परिवेश में काफ़ी स्वार्थ, डर और संदेह की भावना पाई जाती है, जिसके कारण ग्रामीण जीवन काफ़ी अशांत हो गया है। जटिल समाज का मुख्य आधार वैज्ञानिक तरक्की, उद्योगीकरण एवं नगरीकरण है। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है। संपूर्ण आधुनिक समाज जटिल समाज का एक उदाहरण है। जटिल समाज के दो उपखंडों में विभक्त किया जा सकता है, आधुनिक समाज एवं उत्तर आधुनिक समाज। पहला, आधुनिक समाज। आधुनिक समाज की अवधारणा को उसकी विशेषताओं के आधार पर आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। आधुनिक समाज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, पूंजीपतियों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से भारी उत्पादन, प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बाय कैपिटलिज्म। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। तीसरा, महानगरों का विकास। चौथा, नौकरशाही संगठन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तथा पांचवा, शिक्षा एवं वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार। आधुनिक समाज में परस्पर अपेक्षाओं और कर्तव्यों का निर्वाह कानून से होता है। श्रम विभाजन में जटिलता आ जाती है। इसके कारण आधुनिक समाज में अनेक प्रकार की उप संस्कृतियाँ और विरोधी संस्कृतियाँ पैदा हो जाती हैं। आधुनिक समाज में धार्मिक विश्वास में कमी आ जाती है। जटिल समाज में काम करने के बदले मजदूरी या वेतन मिलता है। बाजारू प्रवृत्ति की बहुतायत के कारण अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाले वर्गों के बीच संघर्ष पैदा होता है। मालिक अपने कर्मचारियों के काम की शर्तों को प्रायः काफ़ी व्यापक रखते हैं। काम को हमेशा वेतन से संबंध करके देखा जाता है। मुलाजिम अधिक वेतन और सुविधाएं चाहता है, लेकिन प्रबंधक कम मजदूरी देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं। ऊंचे पदों पर जिम्मेदारी अधिक होने से वेतन व सुविधाएं अधिक होती हैं। प्रायः यही प्रबंधकों तथा कर्मचारी के बीच झगड़े का कारण बन जाती है। आधुनिक समाज में औद्योगिक संघर्ष के कई कारण हैं, जैसे पहला, मशीनीकरण के कारण कर्मचारियों की छटनी। दूसरा, श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल या आंदोलन। तीसरा, मुलाजिमों के द्वारा काम धीरे धीरे करना। चौथा, काम धंधे से गैर हाजिर होना तथा पांचवा कार्य क्षेत्र में जानबूझकर तोड़फोड़ करना इत्यादि। अब दूसरा आधुनिकोत्तर समाज। बहुत समाज वैज्ञानिकों ने विकसित देशों को आधुनिकोत्तर समाज कहना पसंद किया है। कुछ लोगों ने इसे ही औद्योगिकोत्तर समाज भी कहा है, यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल समाज। औद्योगिकोत्तर समाज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें अधिकांश लोग गैर कृषि के कार्यों से जुड़े होते हैं। लोगों के मुख्य जीविकोपार्जन का साधन उद्योग, व्यापार एवं विशिष्ट सेवा होती है एवं समाज में व्यवसायी एवं तकनीशियन का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होता है। तरक्की एवं चिंतन का आधार विज्ञान होता है, इसलिए कुछ लोगों ने औद्योगिकोत्तर काल को वैज्ञानिक युग भी कहना पसंद किया है। यातायात एवं संचार के साधनों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि अब लोग एक दूसरे समाज को काफ़ी निकट आ गए हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी पल भर में ही प्राप्त हो जाती है। इस दुनिया का आकार सिमटता जा रहा है। यही कारण है कि अब विश्वव्यापी ग्राम यानी ग्लोबल विलेज की भी कल्पना की जा रही है। लोगों की निर्भरता मशीनों पर इतनी अधिक हो गई है कि वे कम से कम शारीरिक योगदान देकर अधिक से अधिक भौतिक सुखों का लाभ उठा रहे हैं। एंथनी गिडेंस का समाज का वर्गीकरण। आर्थिक विकास के स्तर को आधार मानकर गिडेंस ने समाज को उद्विकासीय अंदाज में 7 भागों में बांटा है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार है। पहला, शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। इस प्रकार के समाज की उत्पत्ति आज से लगभग 50,000 साल पूर्व मानी जाती है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गिडेंस के अनुसार कोई 0.001% लोग आज भी इस व्यवस्था में पाए जाते हैं, पर यह प्रतिशत नगण्य है। इस अव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जानवरों एवं मछलियों का शिकार तथा जंगलों से प्राप्त कंदमूल और फल जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन होता है। मनुष्य जानवरों की तरह झुंड में रहा करता था। समाज में अस्तरण का अभाव होता है। उम्र और लिंग भेद के आधार पर समाज में विभेदीकरण पाया जाता है। दूसरा, कृषक समाज, एग्रेरियन सोसाइटीज। इस प्रकार के समाज की उत्पत्ति आज से लगभग 12,000 साल पूर्व हुई थी, जो आज भी पाया जाता है। इसका प्रारंभ खेती और बागवानी से माना जाता है, यानी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इस अव्यवस्था में लोग बहुत ही आक्रामक और हिंसापूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन पशुचारी समाज की तुलना में इनके जीवन में उतना अधिक युद्ध और हिंसा नहीं पाया जाता था। इस अव्यवस्था में लोग छोटे छोटे समुदायों में रहा करते थे। जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि था, लेकिन कुछ लोग शिकारी जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। नगरों का विकास नहीं हो पाया था। समाज में अस्तरण प्रारंभ हो गया था और शासन की बागडोर सामुदायिक मुखिया कम्युनिटी चीफ के हाथ में हुआ करती थी। तीसरा, पशुचारी समाज, पेस्टोरल सोसाइटीज। पशुचारी समाज का काल लगभग कृषक समाज से मिलता जुलता है। इस अव्यवस्था का संबंध जानवरों के पालने से है। जीवन यापन के लिए लोगों ने मवेशियों को कई रूपों में इस्तेमाल किया। इस अव्यवस्था में लोग झुंड में रहा करते थे, जिसकी आबादी 100 से लेकर कुछ हजार तक की होती थी। सामाजिक असमानता का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। झुंडों का मुखिया एक सफल योद्धा हुआ करता था। इस अव्यवस्था में लोग एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। घोड़ों की सवारी कर वे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर अपने मवेशियों के साथ जाया करते थे। भेड़, गाय, बकरी, ऊंट और घोड़े उनके मुख्य पालतू जानवर थे। इस स्तर में समाज घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत कर रहा था। चौथा, परंपरागत राज्य या सभ्यता, ट्रेडिशनल स्टेट्स और सिविलाइजेशन। इस प्रकार के समाज का काल ईसा पूर्व 6,000 वर्ष से लेकर 19वीं सदी तक माना जाता है। इस अवस्था में खेती जीवन निर्वहन का मुख्य आधार थी, लेकिन व्यापार और उद्योग का भी पूरी तरह विकास हो चुका था। फलस्वरूप बड़े बड़े नगरों की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। राज्य का शासन राजाओं और महाराजाओं के हाथ में था और समाज पूरी तरह वर्ग के आधार पर विभाजित था। भारत इस बात का अपवाद है कि सामाजिक स्तर का आधार जाति व्यवस्था थी। जीवन में धर्म और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों की काफ़ी प्रधानता थी। पांचवा, पहली दुनिया का समाज, फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटीज। इस अव्यवस्था की शुरुआत यूरोप एवं अमेरिका में 18वीं सदी में हुई। इस अव्यवस्था में अधिकांश लोग नगरों में रहने लगे और आबादी का एक छोटा सा हिस्सा कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करने लगा। समाज में असमानताओं का आधार वर्ग माना जाता है, पर विभिन्न वर्गों के बीच उतनी अधिक सामाजिक दूरी नहीं होती है। आधुनिक तकनीकी और उद्योग इतना विकसित होता है कि लोगों के जीवन में भौतिक सुखों का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान एवं अन्य विकसित देश आज इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी दुनिया का समाज। इस समाज की उत्पत्ति 20वीं सदी के दूसरे दशक में मानी जाती है। विद्वानों का कहना है कि इसकी उत्पत्ति 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुई। इसके अंतर्गत वे तमाम साम्यवादी देश चले आते हैं जो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चीन साम्यवादी देश होते हुए भी इस समाज का उदाहरण नहीं माना जाता है, क्योंकि वह अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है। इस अव्यवस्था में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि और उद्योग दोनों हैं। अर्थव्यवस्था का नियंत्रण राज्य के हाथ में होता है। राज्य वर्ग विभाजन को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वर्ग शोषण और सामाजिक संघर्ष का एक आधार माना जाता है। सातवां, तीसरी दुनिया का समाज, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज। इस प्रकार के समाज का काल 18वीं सदी से लेकर वर्तमान काल तक माना जाता है। इसके अंतर्गत जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि होता है, लेकिन साथ ही यहाँ महानगर और बड़े बड़े कल कारखाने भी पाए जाते हैं। विकास का स्तर इतना निम्न होता है कि लोगों के रहन सहन का स्तर भी निम्न होता है। समाज में असमानताएं काफ़ी पाई जाती हैं। इस श्रेणी में कुछ देश मिश्रित अर्थव्यवस्था तो कुछ देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इस श्रेणी के प्रायः तमाम देश उपनिवेशवाद के शोषण में रहे हैं। जापान को छोड़कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश इसी श्रेणी में आते हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, कोरिया, नेपाल जैसे सैकड़ों देश इस प्रकार के समाज का उदाहरण है।